शांति। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है, इसलिए मानव से ये अपेक्षा की जाती है कि उनका जीवन श्रेष्ठ रीति से व्यतीत हो, अपने आप में वो सार्थक हो। जीवन जीने के कई तरीके हैं और जीवन के लिए समय प्रति समय हमें कई प्रकार के मार्गदर्शन मिलते रहे हैं। मनुष्यात्मा के जीवन की मूलभूत भौतिक जो आवश्यकताएं हैं वो है हवा, पानी और खुराक। उसके साथ साथ रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़े। मनुष्य जीवन भर इन मूलभूत आवश्यकताओं को उपार्जन करने में ही लगा रहता है, जीवन भर उसके लिए मेहनत करता है। लेकिन इन भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ जीवन के लिए और दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी आवश्यकता है, और वो है कि व्यक्ति व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करे और व्यक्ति वस्तुओं के साथ कैसा व्यवहार करे, उस व्यवहार के बारे में उचित समझ उनके पास हो और उस समझ के अनुसार वो अपना जीवन प्रैक्टिकली जी सके, उसके लिए आत्मिक शक्ति की भी आवश्यकता है। इन बातों को लेकर के ही प्राचीन काल से विभिन्न शास्त्रों के द्वारा विभिन्न मते मानव मन को मिलती रही है। हमारे प्राचीन वेदों में भी मानव जीवन को चार आश्रम में विभाजित किया गया है। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष की मानकर वेदों में ये बताया गया कि मानव जीवन के प्रारंभ काल के 25 वर्ष जिसको ब्रह्मचर्याश्रम कहा गया, मनुष्य अपने सांसारिक जीवन से दूर अपनी ब्रह्मचर्य की अवस्था में कहीं जंगल में, गुरुकुल में, गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करें, विद्या अध्ययन करें। जीवन के आरंभ के ये 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम के विशेष विद्या उपार्जन के लिए माना गया। उसके बाद के 25 वर्ष गृहस्थाश्रम कहा गया, गुरु से दीक्षित होकर संसार कर्म क्षेत्र में आकर अपना जीवन जीना, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाना। और इस गृहस्थाश्रम के बाद जीवन के 25 वर्ष वानप्रस्थ माना गया, जिसमें व्यक्ति अपने होते हुए प्रवृत्तियों से न्यारा रहे। और उसके बाद के 25 वर्ष संन्यास आश्रम कहा गया कि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से अलग होकर संन्यास लें और ईश्वर प्राप्ति के लिए उपासना करें। लेकिन वर्तमान समय के अनुसार ये बात हमारे जीवन के अनुरूप कहां तक है, क्योंकि अभी मानव जीवन की औसत आयु 100 वर्ष की नहीं है। वैसे भी अकाल मृत्यु का फुल समय चल रहा है, इसलिए जो भी जीवन हमारे हाथ में है उसमें ही इन चारों ही आश्रम का एक साथ समन्वय होना चाहिए। राजयोग जीवन पद्धति जिसमें चारों ही आश्रम का एक साथ समावेश होता है, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर राजयोगी जीवन बनाना अपने आप में जीवन को श्रेष्ठ रीति से जीने की पद्धति को अपनाना है। राजयोगी जीवन पद्धति में ब्रह्मचर्याश्रम समाया हुआ है, क्योंकि योगी जीवन का आधार पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है। पवित्र मन परमात्मा की याद में सहज एकाग्र हो सकता है। विषयी मन मन को चंचल बनाता है, मन को भटकाता है, इसलिए विषय विकारों का उपभोग न कर पवित्रता के व्रत को अपनाना, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, ये योगी जीवन का मुख्य आधार है। पवित्रता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ धारणा है, इसलिए कहा गया है कि पवित्रता जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं की कुंजी है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। हम अपने जीवन में सुख और शांति तो चाहते हैं, लेकिन पवित्रता रूपी जननी को खत्म करके सुख और शांति रूपी बच्चे हम जीवन में चाहते हैं तो वो कहां से प्राप्त होगा। इसलिए पवित्रता ही सच्ची पर्सनालिटी है। पवित्रता ही सही अर्थ में रॉयलिटी है। इसलिए तो देखिए पवित्र देवी देवताओं को हम नमन करते हैं, पूजन करते हैं, उनका गायन करते हैं। है ये देवी देवताएं गृहस्थ में रहने वाले ही प्रवृत्ति मार्ग के हैं, लेकिन अपनी पवित्रता संपूर्ण निर्विकारिता के कारण ही पूजनीय है। साधु संत सन्यासी महात्माएं भी पवित्रता के कारण ही माननीय है, वंदन योग्य है। कुमारी भी जब तक पवित्र है पूजन के योग्य है। इसलिए जब हम अपने जीवन को राजयोगी बनाते हैं तो उसमें पवित्रता समाहित है और उस ब्रह्मचर्य की स्थिति में आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करने का अभ्यास हम करते हैं। जीवन और जगत के जो सनातन सत्य हैं, उन सत्यों को अपने आचरण में लाने का अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने आप का अध्ययन करके अपने आप को परिपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए योग का आधार पवित्रता है। पवित्र बनते हैं तो हम योगी बन सकते हैं, और जितना हम योगी बनते हैं उतना हमारी पवित्रता परिपक्व बनती है। इस प्रकार राजयोग की जीवन पद्धति को जब हम अपनाते हैं तो ब्रह्मचर्याश्रम स्वतः ही पालन हो जाता है। गीता में भी ये कहा गया है कि कामात जायते क्रोधः, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से स्मृति नाश होता है, विवेक भ्रष्ट होता है, और कहा गया है कि विवेक भ्रष्ट जिसका होता है उसका शत मुखे विनिपात होता है। इसलिए पवित्रता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। जब हम अपने आप में ब्रह्मचर्य की शक्ति अपनाते हैं तो हम अपनी अन्य सर्व आत्मिक शक्तियों का सदुपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य कोई निषेध नहीं है, दमन नहीं है, लेकिन एक साधना है। इस प्रकार राजयोगी जीवन पद्धति में हम प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र बनते हैं, योगी बनते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें योग को कर्म में समाना है, इसलिए इसमें गृहस्थाश्रम भी समाया हुआ है। हम अपनी गृहस्थी, चाहे इस देह और इंद्रियों की प्रवृत्ति की गृहस्थी हो, चाहे दैहिक संबंधों की प्रवृत्ति हो, चाहे इस दैहिक संसार की प्रवृत्ति हो, हम अपनी इस प्रवृत्ति और व्यवहार को निभाते हुए उसमें कमल पुष्प के समान अलिप्त रहते हैं। तो राजयोग की जीवन पद्धति इतनी सहज और स्वाभाविक है कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेवारियों को निभाते हुए पारिवारिक और सामाजिक फर्ज अदाई करते हुए हम पिता परमात्मा के साथ योगयुक्त हो सकते हैं। बल्कि हम अपनी प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बना सकते हैं। आज हम गृहस्थ की जिम्मेवारियों को बोझ समझते हैं, गृहस्थ एक जंजाल है ऐसा समझते हैं, और उसमें हम तंग हो जाते हैं। लेकिन राजयोग की जीवन पद्धति हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी इन जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने आप को कैसे ट्रस्टी बनाना है, निमित्त भाव से निर्मल स्वभाव रखते हुए निर्माणता के रचनात्मक कार्य हमें करने हैं। तो हमारी जिम्मेवारियां, हमारी प्रवृत्ति योग अभ्यास में बाधा रूप नहीं है, लेकिन राजयोग और ही हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। जो गृहस्थ जीवन हम क्रोध से, अशांति से, अपवित्रता से चलाते हैं, उसी गृहस्थ व्यवहार को उतने ही साधनों से और उन्हीं संबंधों के साथ रहते हुए हम शांति से, पवित्रता से और आनंद से व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए राजयोगी बनने से हमारा जीवन सही अर्थ में आश्रम बन जाता है। प्रवृत्ति भी है, फिर भी शांति और आनंद होता है। राजयोग जीवन पद्धति में वानप्रस्थ आश्रम का भी समावेश है, क्योंकि अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी, प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम अपनी वृत्ति को उपराम बनाते हैं। वानप्रस्थ माना कि सब कुछ करने के बाद उसमें रहते हुए भी न्यारा उपराम होना, कहीं भी आसक्त नहीं होना और अपनी वृत्तियों को परमात्मा के लगन में लगाना। लेकिन ये शरीर से वानप्रस्थ होने की बात नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति जीवन भर सांसारिक तृष्णाओं को भोगता है, दैहिक सुखों को भोगता है और वो भोगते भोगते उसकी कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर से वो वानप्रस्थ हो जाता है, लेकिन मन की वृत्तियां वानप्रस्थ नहीं होती है, वृत्तियां और दृढ़ होती है, जो हमें श्रेष्ठ चिंतन या प्रभु चिंतन में बाधक बनती है। इसलिए शरीर से वानप्रस्थ बनने की बात नहीं है। जीवन में राजयोगी जीवन पद्धति का सत्य ज्ञान जिस क्षण हमें प्राप्त होता है, उस क्षण से ही हमें अपनाना होता है, अपनी वृत्तियों को उपराम करना है और वानप्रस्थ माना वाणी से पर, इस आवाज की दुनिया से दूर हमें शांति की दुनिया की ओर जाने का पुरुषार्थ करना है। हम अपनी जिम्मेवारियां निभाएं, लेकिन उसमें लिपित नहीं हो जाएं, उसी में मय नहीं हो जाए, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी जब हम ये समझते हैं कि यह विश्व नाटक अब तो अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है, कलयुग अब अपने अंतिम श्वास पर है, आज का बालक भी वानप्रस्थ ही है, इसलिए वृत्ति से उपराम होना है, अपने आसक्ति के लंगर को यहां से उठा लेना है। अगर हम अपने आसक्ति के लंगर को उठाते नहीं हैं, तो हम कितना भी बाह्य रूप से आध्यात्मिक साधना करते रहे, लेकिन उससे हम अपने आप में शक्ति भर नहीं सकते हैं। तो आसक्ति मिटाना और निमित्त ट्रस्टी बनकर, न्यारा होकर जीवन में परमार्थ को भी महत्व देते हुए उस पुरुषार्थ में लगना, ये है राजयोग की जीवन पद्धति से वानप्रस्थ आश्रम का जीवन में समावेश करना। और अंतिम जो आश्रम कहा गया है, संन्यास आश्रम, हम अपने इस जीवन में रहते हुए जब राजयोगी बनते हैं, तो उसमें संन्यास आश्रम का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि संन्यास माना कोई बाह्य रूप से घरबार छोड़ना, भगवा पहनना या जंगल में चले जाना, वो संन्यास नहीं है, लेकिन बुद्धि से भूलना है। छोड़ना नहीं है, लेकिन इन सबको भूलना है और एक परमात्मा से अपनी लगन को बढ़ाना है। हमें विकारों का, विकर्मों का, विकल्पों का संन्यास करना है, न कि अपनी जिम्मेवारी या संबंधों का संन्यास करना है। जब विकारों का संन्यास हम करते हैं, बुद्धि से इस देह और देह के संबंध को भूलते हैं, अर्थात अपनापन, मैंपन या मेरापन हम मिटाते हैं, तो हम इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे कि देह के वैरागी हैं, देह के सन्यासी हैं। हमें अपना ड्रेस नहीं बदलना है, लेकिन हमें अपने आंतरिक दिल का परिवर्तन करना है। स्थान बदलने से हमारी आंतरिक स्थिति नहीं बदल जाती है, क्योंकि व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल में चला भी जाए, लेकिन वहां भी अगर देह अभिमान में रहे, आसक्तियां बनी रही, तो वहां भी हमें सांसारिक बातें याद आती रहेगी। इसलिए आज का कलयुगी संसार ही कांटों का जंगल है, और शरीर रूपी इस विचित्र गुफा में हम बैठे ही है। प्रकृति के आसन पर स्थित हम आत्माएं हैं। जब प्रभु से हम योगयुक्त हो जाते हैं, तो अपने आप हमारा बुद्धियोग, विकारी प्रवृत्ति और वृत्तियों से दूर होने लगता है। इस प्रकार राजयोगी बनिए, तो ये चारों ही आश्रम का सही अर्थ में जीवन में समावेश हो जाता है। ओम शांति।